आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आपने विरोध प्रदर्शन का ये नारा जरूर सुना होगा, What do we want? Land rights, यानी हमें क्या चाहिए? भूमि अधिकार। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? भूमि अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर पहचान, संस्कृति और कल्याण का केंद्र है। इसे कंट्री कहा जाता है जिसमें जमीन, जलमार्ग, आकाश और सभी जीव जंतु शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश में आज हम समझेंगे इंडिजिनस भूमि अधिकारों को। ये क्या होते हैं, किन भूमियों पर लागू होते हैं, कौन दावा कर सकता है और इनका प्रथम राष्ट्र समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कई वर्षों तक अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के भूमि से गहरे संबंध को मान्यता नहीं मिली। उनकी पारंपरिक जमीनों पर कानूनी अधिकार देने के लिए भूमि अधिकार कानून बनाए गए। उपनिवेशीकरण से पहले अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग दसियों हजार वर्षों तक भूमि की देखभाल करते आए थे, लेकिन उपनिवेशीकरण के दौरान टेरा नलिस यानी किसी की भी भूमि नहीं की गलत धारणा पर आधारित हो ये भूमि बिना किसी समझौते के छीन ली गई। आधुनिक भूमि अधिकार आंदोलन 1966 में वेव हिल वॉक ऑफ से शुरू हुआ। ये नॉर्दर्न टेरिटरी में गुरिंजी पशुपालकों और उनके परिवारों की हड़ताल थी। इसके बाद 1967 में एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम ने सरकार को प्रथम राष्ट्र लोगों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी। 1976 में अबोरिजिनल लैंड राइट्स नॉर्दर्न टेरिटरी एक्ट पारित किया गया। ये पहला कानून था जिसने पारंपरिक भूमि दावों को मान्यता दी। हालांकि कुछ राज्यों के अपने भूमि अधिकार कानून हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस संबंध में अभी तक कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। इसी के साथ भूमि परिषदों यानी लैंड काउंसिल्स की स्थापना की गई ताकि वे अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके और उन्हें लौटाई गई भूमि का प्रबंधन करने में उनकी मदद कर सके। भूमि अधिकार केवल सरकारी स्वामित्व वाली भूमि यानी क्राउन लैंड पर लागू होते हैं, निजी संपत्ति पर नहीं। इस भूमि को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही गिरवी रखा जा सकता है। ये ट्रस्ट में रखी जाती है ताकि प्रथम राष्ट्र लोग अपने कंट्री की देखभाल कर सके और उससे जुड़े निर्णय ले सके। प्रथम राष्ट्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए विराजुरी नियम्बा समुदाय से जुड़ी और जल अधिकार विशेषज्ञ डॉक्टर वर्जीनिया मार्शल बताती हैं कि भूमि और जल के साथ प्रथम राष्ट्र लोगों के संबंध कितने गहरे और महत्वपूर्ण हैं।
The water speaks to us, or the trees speak to us, but we don't need to take on a Western environmental ideology and dialogue that isn't based in our understanding and our law.
तो आइए अब एक ऐसी चीज को सरल करके समझें जो इस संबंध में थोड़ी उलझी हुई लग सकती है। भूमि अधिकार, नेटिव टाइटल और संधि। भूमि अधिकार वे कानून हैं जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं और जिनके तहत कुछ क्षेत्रों की भूमि अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदायों को लौटाई जाती है। इन भूमियों का प्रबंधन आमतौर पर भूमि परिषदों यानी लैंड काउंसिल्स के माध्यम से किया जाता है जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनका सहयोग करती हैं। इसके बाद आता है नेटिव टाइटल। ये कानूनी मान्यता है कि कुछ प्रथम राष्ट्र लोग अब भी अपने पारंपरिक कानूनों और रीति रिवाजों के आधार पर भूमि और जल पर अधिकार रखते हैं। ऐसे रीति रिवाज जिन्हें हजारों वर्षों से बनाए रखा गया है। और अंत में आती है संधि यानी ट्रीटी। संधि सरकारों और प्रथम राष्ट्र लोगों के बीच एक औपचारिक समझौता होती है। न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देशों में ऐसी संधियां पहले से मौजूद हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यहाँ अभी तक एक राष्ट्रीय संधि की दिशा में काम चल रहा है और फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई राष्ट्रीय संधि अभी नहीं है। ये सभी प्रयास मिलकर न्याय, मान्यता और वास्तविक परिवर्तन लाने का उद्देश्य रखते हैं। भूमि की वापसी से समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति और कंट्री से दोबारा जुड़ पाते हैं और ये आवाज स्वास्थ्य और आर्थिक स्वतंत्रता जैसी जरूरतों को भी सहारा देती है. डॉक्टर मार्शल इसके महत्व को समझाती हैं.
Need to be self-determining, whether it's leading a committee, leading research, leading new ideas, forging new opportunities and partnerships in technology, and also health.
भूमि अधिकारों का वास्तविक प्रभाव गहरा रहा है. NSW Aboriginal Land Rights Act के तहत स्थापित Darkinjing Local Aboriginal Land Council इस बात का एक मजबूत उदाहरण बन गई है कि भूमि अधिकार क्या हासिल कर सके हैं. गोमेराय समुदाय से अंकल बैरी डंकन Darkinjing के मूल संस्थापकों में से एक थे, जिसकी शुरुआत 1983 में उनके माता पिता के घर के सेहन से हुई थी.
It was a way about getting land back in the invested back in the Aboriginal ownership.
अपने जीवन काल में अंकल बैरी ने देखा कि भूमि अधिकारों ने कैसे न्यू साउथ वेल्स के सेंट्रल कोस्ट पर उनके समुदाय को आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्णय की शक्ति दी है. अंकल बैरी इसे आगे समझाते हैं.
Talk from non-Aboriginal people about how we're going to take their backyards, claim really stuff that was said that about us that, was a lot of detriment. But now people know that I think in this generation that we are very wise and smart with land holdings.
ये समझना जरूरी है कि इंडिजिनस लोगों को भूमि अधिकार देना किसी के घर या आंगन को छीनना नहीं है. भूमि अधिकार केवल क्राउन लैंड यानी सरकार की स्वामित्व वाली भूमि पर लागू होते हैं, निजी संपत्ति पर नहीं. इसका उद्देश्य उस भूमि को प्रथम राष्ट्र समुदायों को लौटाना है जहां मान्यता प्राप्त संबंध है, जो अक्सर ऐतिहासिक निवास या सांस्कृतिक महत्व के जरिए जुड़ा होता है. प्रगति के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं. ये प्रक्रिया धीमी और जटिल हो सकती है और भूमि की उपलब्धता भी सीमित है. भूमि अधिकार न्याय, सुलह और प्रथम राष्ट्र की संप्रभुता को मान्यता के व्यापक प्रयासों से गहराई से जुड़े हुए हैं. जो लोग ऑस्ट्रेलिया में नए हैं, उनके लिए भूमि अधिकारों को समझना देश की गहरी कहानी से जुड़ने की दिशा में एक अहम कदम है. ये भूमि खोने के बारे में नहीं है, बल्कि उस संबंध को मान्यता देने और पुनर्स्थापित करने के बारे में है जो प्रथम राष्ट्र लोगों और भूमि के बीच 60,000 वर्षों से अधिक समय से कायम है. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश को SBS न्यूज से निकाया हचिंग्स और SBS हिंदी से प्रशाली जैन ने प्रस्तुत किया है.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.